नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज बाद में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात मतदाताओं के लिए सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। इसमें लगभग 32 लाख लोग शामिल हैं। भारत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को समस्या समाधान कौशल से लैस करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में एआई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कई संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। घने कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना। और महिला क्रिकेट में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला में आज शाम विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का आज मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है। मतदाताओं के लिए अपना नाम जोड़ने, सुधार करवाने या मतदाता सूची से नाम हटवाने का ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदेश में आज सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। सुबह 10 बजे से प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है, जहां मतदाता अपना नाम जांच सकते हैं। जबलपुर जिले के बीएलओ अनिल केवट ने जानकारी साझा की।
मेरी भाग संख्या 281 है। आज मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है, जो की जनता की सुविधा के लिए सुबह 10 बजे से ये कैंप चालू है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज बाद में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात मतदाताओं के लिए सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। कोलकाता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं है। इन मतदाताओं और उनके संबंधियों के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिल पाए थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 10 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 22 लाख नोटिस आज से भेजे जाने हैं। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव एसबी जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल के नेतृत्व में आयोग का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज कोलकाता जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी देशवासियों को सुरक्षा देने और देश की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज नई दिल्ली में 38वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी इंडाउमेंट व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दशक में आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने देश के आंतरिक खतरों को समाप्त किया है।
After independence, IB has been playing a stellar role in providing security to the people of India and assuring unity and integrity of the nation. During last decade, our security agencies like IB have neutralized numerous threats within the country and they have demonstrated dominance over the forces that threaten national security.
राष्ट्रपति ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आईबी के असाधारण योगदान की सराहना की। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन उपस्थित थे। निदेशक तपन कुमार डेका ने कहा कि आईबी देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा आगे रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन एआई महाकुंभ को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि AI स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शुरुआत में ही AI के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा और समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।
Artificial intelligence should be an integral part of the curriculum in schools and colleges. Early exposure to AI will equip students with critical thinking, problem-solving skills, and future-ready competencies essential for technology-driven world. Artificial intelligence represents a landmark moment in the history of technological evolutions, just like the previous industrial revolutions.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक आत्मनिर्भर, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त विकसित भारत की दिशा में AI की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि AI का उद्देश्य शिक्षा के मानवीय उद्देश्य को पुनर्स्थापित करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने हेतु विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। एक वीडियो संदेश में श्री चौहान ने कहा कि यह योजना मनरेगा के आगे का कदम है।
विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी, और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है।
श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित, आत्मनिर्भर, गरीबी मुक्त और रोजगारोन्मुखी गांवों के निर्माण के लिए जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना कार्यों, आजीविका आधारित गतिविधियों और आपदा निवारण उपायों पर केंद्रित है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 के एक भूमि सौदे से जुड़े कथित धन शोधन मामले से संबंधित है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के अंतर्गत चार्जशीट पर ईडी की याचिका पर अगले वर्ष 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। ईडी ने वाड्रा पर हरियाणा में जमीन के धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे के माध्यम से अपराध की आय अर्जित करने का आरोप लगाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अपराध की आय वाड्रा द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के माध्यम से भेजी गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए 45 करोड़ डॉलर का पैकेज प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कोलंबो में मीडिया को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस पैकेज में 35 करोड़ डॉलर की रियायती ऋण लाइन और 10 करोड़ डॉलर का अनुदान शामिल है, जिसका उद्देश्य चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता करना है। डॉ जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की और चक्रवात से हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा।
प्रधानमंत्री मोदी का वो पत्र जो मैंने सौंपा, वो श्रीलंका के लिए हमारी सबसे पहले सहायता पहुंचाने की भूमिका को और दृढ़ता से प्रदर्शित करता है। ये 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की प्रतिबद्धता भी जताता है। वास्तव में ये हमारी पड़ोसी पहले और महासागर नीतियों के अनुरूप ही है। ये स्वाभाविक ही था कि भारत ऐसे समय में आगे आया जब श्रीलंका कई संकटों का सामना कर रहा था। हमने तब भी ऐसा किया था जब आप आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे थे।
When you were going through economic difficulties as well.
डॉक्टर जयशंकर ने आश्वासन दिया कि भारत श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देना जारी रखेगा, जिससे देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की और चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण में भारत की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल सुबह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के माध्यम से LVM-3M6 मिशन के तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरे प्रक्षेपण पैड से होगा। इस मिशन में भारत के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 का उपयोग किया जाएगा। ये LVM-3 की छठी परिचालन उड़ान होगी। ये मिशन विश्वसनीय और किफायती वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों में देश को और मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों और दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में आज नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्षेत्र में 3 स्तरीय नाकेबंदी की गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारी बांग्लादेश प्रशासन के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आग्रह किया है कि दीपू चंद्रदास की जघन्य हत्या के दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया है कि सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने हिंदुओं को भीड़ द्वारा मारे जाने सहित हाल के हमलों पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखने वाले लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। श्री गुतरश ने मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने कहा है कि न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों की आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय सेवा परिदृश्य में पारस्परिक अवसरों का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय सहयोग को गति देने, बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने के लिए एक संस्थागत और नियामक ढांचा स्थापित करेगा। राष्ट्रीय किसान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये दिन देश के विकास में किसानों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे।
भारत का कृषि क्षेत्र, जिसमें देश की लगभग आधी आबादी जुड़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार बना हुआ है। किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और सतत कृषि विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन पहलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम से संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। देश में इस वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 357 मिलियन टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.65% अधिक है। वहीं वर्ष 2014-15 के मुकाबले देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 42% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण कई रेल और उड़ानें बाधित हुई। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज बाद में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अज्ञात मतदाताओं के लिए सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। इसमें लगभग 32 लाख लोग शामिल हैं। भारत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को $45 करोड़ का पुनर्निर्माण पैकेज प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने छात्रों को समस्या समाधान कौशल से लैस करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में AI को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कई संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। घने कोहरे के कारण दिल्ली NCR क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।